दो अव्यक्त वाणियां भी चल चुकी हैं, मुरली सुनना है या अव्यक्त वाणी सुननी है? है जोर से बोलो,
मुरली सुननी है बाबा।
बाबा तीन ग्यारह छाछठ का प्रातः क्लास चल रहा था, गुरुवार को नौवें पेज के आदि में बात चल रही थी सभी भ्रष्टाचारी बनते जा रहे हैं, खुद भी भ्रष्टाचारी और जो लाखों को समझाते हैं वो भी भ्रष्टाचारी और समझाते जाते हैं, क्योंकि झूठ बताते रहते हैं ना, यानी वो कहते तो हैं भगवान वाच, मनमना भव मध्याजी भव, सो तो तब कहें जब भगवान वाच तब हो, जब भगवान खुद आवे अच्छा तुम याद करते हो शिव बाबा को? उनसे कोई पूछे तो सही, बिल्कुल नहीं। शिव बाबा को जानते भी नहीं, सिर्फ सर्वव्यापी का ज्ञान है। वो खुद भी योगी नहीं है, जो गीता सुनाने वाले हैं वो कोई योगी थोड़े ही हैं ना, एक भी नहीं है। जो अपन को आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करते हैं, ऐसे सैंपल एक भी नहीं है। पीछे खाली भक्ति मार्ग की ये बात सुनी सो तो बहुत ही सुनाते आते हैं, परंतु प्रैक्टिकल में करते तो कुछ भी नहीं है। अच्छा चलो बच्चे, मानो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, कितनों को पढ़ाते हैं, तो समझते तो नहीं होंगे। तो ये भी टीचर नहीं समझाएगा, बस ये भी सब समझते हैं अच्छी तरह से, बिल्कुल ही। क्यों? कि समझाने के लिए तो देखो होशियार हुए हैं और समझाते रहते हैं। अभी कोई भी भाषा में ट्रांसफर करके समझाते रहते हैं। अभी बाबा हिंदी में बोलते हैं, हिंदी तो समझते हैं, फिर हिंदी के सिवाय और भी तो लैंग्वेजेस समझते हैं ना। गवर्नमेंट भी हिंदी के लिए सब तरफ कहती है, परंतु हिंदी तो सब तरफ हो ही नहीं सकेगी। अभी वो पंजाबी स्वभाव संस्कार, तो क्या वो हिंदी सीखेंगे? नहीं, वहां फिर वो कहेंगे सब पंजाबी बोलो, पंजाबी सीखो। वो जरूर पंजाबी भाषा सिखलाएंगे, वो वहां पंजाब में कभी हिंदी नहीं सिखलाएंगे, क्योंकि उनकी मदर टंग लैंग्वेज है ही पंजाबी। तो और जास्ती मत्था क्यों मारे? हाँ, सर्विस के लिए कोई भी लैंग्वेज सीख करके उनको पगार तो अच्छा मिल सकता है, जैसे सभी लैंग्वेज में सर्विस करते हैं। यहाँ भी अगर बाबा को और लैंग्वेजेस वाला अच्छा मिले और ये ज्ञान समझ जाए, तो सभी लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज वाला आवे तो उनको हम समझाने के लिए मुकर्रर कर देवे कि भाई ये तेलुगु भी जानते हैं, कन्नड़ भी जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं, फलानी फलानी लैंग्वेज जानते हैं, ढेर की ढेर लैंग्वेजेस हैं। और चाहिए सभी यहाँ के लिए लैंग्वेजेस, हाँ चलो बच्चे रिकॉर्ड बजा, पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवारे हो। देखो ये जो स्वामी अक्षर है ना, स्वामी अक्षर इनको दिया जाता है ना, स्वामी कहो साईं कहो, वास्तव में अभी स्वामी अक्षर कोई ले नहीं सकते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि का स्वामी तो एक ही है। और यहाँ तो स्वामी बहुत हो गए हैं, साधु संत महात्मा उन सबको स्वामी स्वामी कहते रहते हैं। नहीं तो वास्तव में सारी महिमा इनकी है, इनकी कह करके किस तरफ इशारा किया होगा है? किस तरफ? इनकी ये पीछे लक्ष्मी नारायण का चित्र रखा रहता था, लक्ष्मी नारायण की ओर इशारा करके बताया सारी सृष्टि के स्वामी तो ये हैं, जो डायरेक्ट नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं। जो इनकी महिमा है वो इनकी महिमा तो कोई दूसरे को नहीं मिल सकती। क्या महिमा है? है सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। नहीं तो ला कायदा तो कहता है कोई भी ये शुद्ध देवताओं का, जैसे श्री लक्ष्मी और नारायण, कभी भी जो पाप आत्मा हैं उनका ये नाम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या क्या नाम? अरे नाम किस आधार पर पड़ता है? तो क्या काम है जो इनको ही स्वामी कहते हैं, सारी सृष्टि का स्वामी? काम के आधार पर नाम है तो इनका नाम नारायण। नार माने ज्ञान जल और आयन माने घर, अर्थात ये वो आत्मा है या वो आत्माएं हैं लक्ष्मी नारायण, जिनका सारी सृष्टि में जो पार्ट है वो पार्ट ज्ञान युक्त पार्ट है या ज्ञान युक्त पार्ट भी है? है कैसी? संगम के शूटिंग पीरियड में तो कहें कि भगवान बाप आकर के इनको नरसे नारायण बनाते हैं, गीता ज्ञान दे करके। तो संगम की सारे जीवन में ये 100% ज्ञान धारण करके आरों को भी समझाते हैं, जैसे कि सारा जीवन ज्ञान जल में ही वास करता है। जो नार आयन नारायण नाम पड़ता है, सभी का 100% जीवन तो ऐसा नहीं हो सकता। नंबर बार तो होते ही हैं, परंतु सतयुग में भी और त्रेता में भी इन्हीं नारायण वाली आत्माओं को जिनकी पीढ़ियां चलती हैं, नंबर वार फर्स्ट नारायण की ही पीढ़ी चलती है, नारायण दी फर्स्ट, नारायण दी सेकंड, नारायण दी फोर्थ, जैसे किंग एडवर्ड फर्स्ट, किंग एडवर्ड सेकंड, थर्ड, तो वहां भी यथा राजा तथा प्रजा सभी कैसे नारायण है, कैसे ज्ञान जल में वास करने वाले हैं। वहां देवताओं को तो ज्ञान होता ही नहीं, यथा राजा तथा प्रजा कहा जाता है, तो जरूर कहेंगे कि वो नारायण वाली आत्मा भी जो उत्कृष्ट देवता बनती है उसको फॉलो करने वाली सारी प्रजा ज्ञान का जो सार है, मैं आत्मा ज्योतिबिंदु, उस ज्योतिबिंदु सार में ही निवास करती है। तो सब नारायण समान हुए, नंबर वार। आधा कल्प नंबर वार आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाले, आधा कल्प के बाद जब द्वैतवादी द्वापर युग आता है तो भी वो ज्ञान जल में वास करने वाली नारायण वाली आत्मा ही द्वापर आदि के सात्विक समय में श्रीमद् भगवत गीता की रचना करती है, और श्रीमद् भगवत गीता में वेदों का सार ही डाल देती है। उनका नाम पड़ता है वेद व्यास, विद माने जानकारी, वेद माने जानकारी का शास्त्र, काहे की जानकारी, सत्य की जानकारी, सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है, असत्य को अज्ञान कहा जाता है। सत्य सदाकाल के लिए स्थायी होता है, और झूठ तो स्थायी रहता ही नहीं, झूठ भाग खड़ा होता है। स्थिर नहीं रह सकता। सत्य का कभी भी अभाव नहीं होता है संसार में, चाहे द्वापर हो चाहे कलयुग हो। सत्य आता ही है सत्य से, सत्य सार को कहा जाता है, और सार है ही पवित्रता, प्योरिटी, रूहानियत। इस रूहानियत में टिकने वाली आत्माएं रूहों के लोक से इस सारी सृष्टि पर टाइम टू टाइम आती ही रहती है। सत्य धाम से सत्य आत्माएं आएंगी या असत्य भी आएंगी, है? नाम ही है आत्मलोक, सोल वर्ल्ड। आत्मा ही तो सत्य है, इस सृष्टि में आकर के देह में प्रवेश करती है, तो पहले पहले सत्य, फिर संग के रंग से सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजो प्रधान और तमो प्रधान बनती जाती है। तो कहेंगे इस सृष्टि पर आत्मा सदैव ही कायम है, ऊपर से आने वाली आत्माएं तो सदा आती ही रहती हैं, चारों युगों में आती हैं। परंतु कुछ ऐसी भी आत्माएं हैं जो सृष्टि के एकदम आदि में आती हैं, परमधाम की स्टेज को छू करके आती हैं। उन सत्य की आदि की आत्माओं को ज्यादा लंबे समय तक सोल वर्ल्ड में रहने की दरकार ही नहीं है। क्योंकि वो ऐसी प्रकृष्ट पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं हैं सदैव निराकारी आत्मिक स्टेज में रहने वाले भगवान की सन्निधि में आने वाली आत्माएं हैं, जो आत्माएं इस सृष्टि पर भी हीरो पार्ट बजाने वाली आत्मा के ज्यादा से ज्यादा समय तक नजदीक रहती है। जिसे सारी सृष्टि का स्वामी कहा जाता है, मालिक कहा जाता है, और वो सारी सृष्टि का मालिक बनता ही तब है जब गॉड इज ट्रुथ को, सत्य बाप को पूरी तरह पहचान लेता है। ऐसे सत्य के संग में आने वाली आत्माएं संगम युग में ही सदा साथ निभाती है, ऐसा नहीं है शूटिंग पीरियड में सदा साथ निभाएंगी। तो जो ह्यूज ड्रामा है, ब्रॉड ड्रामा, उसमें भी तो सदा साथ निभाती है। तो संघ का रंग भी उन्हीं को जास्ती लगता है। जास्ती संघ का रंग लेने के कारण वो आत्माएं भी ज्ञानी तू आत्मा कही जाती हैं। ज्ञान माने सत्य, सत्य को धारण करने वाली। उन आदि की आत्माओं को छोड़ करके उस श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पीढ़ी वाली आत्माओं को छोड़ करके बाद में आने वाली जो भी अन्य आत्माएं हैं, वो सदा सत्य के संग न होने के कारण असत्य का भी संग करती रहती है। क्योंकि सत्य को पहचानने में उनकी रुचि उतनी नहीं होती जितना झूठों का संग करने में रुचि होती है। इसलिए बाद की पीढ़ियों में आने वाली सभी आत्माएं पाप आत्माएं बनती हैं। नंबरवार कुछ न कुछ पाप आत्माएं, भले भगवान इस सृष्टि पर आ जाता है, पाप की दुनिया को खत्म करने के लिए आ जाता है, तो भी वो पाप करना नहीं छोड़ती। इसलिए उन्हें बरबस ही शरीर त्यागना पड़ता है, स्वेच्छा से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर शरीर नहीं त्याग पाती। देहभान रह जाता है और देहभान ही उनसे पाप कराता रहता है। पुरुषोत्तम संगम युग के अंत में सृष्टि में मां मृत्यु के समय में वो आत्माएं देहभान रहने के कारण विनाशी सृष्टि में आती रहती है। अर्थात पांच हजार वर्ष के चतुर्युगी बिना ड्रामा में उन आत्माओं का पूरा पाठ नहीं चलता। इसलिए वो ज्यादा लंबे समय तक नंबरवार सत्य धाम में पड़ी रहती है। इस सृष्टि की दुनिया में उतनी अनुभव ही नहीं बन पाती, क्योंकि आदि से अंत तक पार्टी ही नहीं बजाती। तो उन आत्माओं का ये कोई नाम नहीं होना चाहिए, नारायण सदैव ज्ञान जल में वास करने वाली आत्मा। बाकी जो नारायण है और उनकी सारी प्रजा है, वो सारे ही फॉलोअर्स बुद्धि योग से नारायण में ही वास करते हैं। उन्हीं का संग का रंग लेते हैं। नंबर वार, इसलिए सभी नारायण समान हैं। सभी जन्मों में वो सत्य का ही आधार लेते हैं। झूठ को सपोर्ट नहीं करते, इसलिए कहा जा सकता है कि वो सदैव ज्ञान जल में ही वास करते हैं। मनसा के संकल्पों से, दृष्टि से, मन दृष्टि में व्यभिचार नहीं आता, अन्य पीढ़ियों के मुकाबले। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम देवताएं कहे जाते हैं, 16 कला संपूर्ण कहे जाते हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी मर्यादा में रहते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया, एक कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती है सारा जीवन, और राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती है। तो दृष्टि में भी सत्य समाया हुआ है, ज्ञान समाया हुआ है, जिस ज्ञान के आधार पर वो जन्म जन्मांतर सुखी रहते हैं। सुख का आधार ही है पवित्रता। अपवित्रता ही संसार में दुख बढ़ाती है। इसलिए बोला, दुनिया में जो भी पापात्माएं हैं, उनका कोई ये नाम नहीं होना चाहिए नारायण। ज्ञान जल में सदैव वास करने वाली, ज्ञान इंद्रियों से भी वास करने वाली, और जब भ्रष्ट दुनिया शुरू होती है द्वापर युग से द्वैतवादी, तो वहां भ्रष्ट इंद्रियों में भी शेष्टाचारी, जो सिखों में भी आज गायन है, एक पत्नी सदा ब्रह्मचारी, लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण और ये सीताराम, अब विचारी स्वभाव के थे ना, तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे ना, बस यही नाम शुद्ध है। लक्ष्मी का अर्थ है जिसने ये प्राण कर लिया, कि सारा जीवन लक्ष्य ये धारण किया हुआ है कि पवित्र जीवन ही बिताना है। राधे नाम पड़ता है, राधा कहते ही तब है जब राम को धारण करने का लक्ष्य हो। राधा ही पात्रधारी है, जिसको शास्त्र में महारानी का पद मिलता है। और तो भगवान की पट्टरानियां गाई हुई हैं, महारानी नहीं गाई हुई है। पट्टरानी का मतलब ये है पुरुषार्थ करते करते जीवन में जो गलतियां की हैं व्यभिचार की, उनके कारण अंत में वो गति हो जाती है, पतन की गति। तो राम को ही जिसने जीवन में धारण किया उसका नाम राधा। राम कहा ही जाता है, जिसमें योगियों ने रमण किया है, आनंद किया है, अतीन्द्रिय सुख भोगा है। इसलिए बोला कि यही शुद्ध नाम है। और इनके फॉलोअर्स से भी शुद्ध, तो ये नाम तो और किसी के नहीं होने चाहिए। कहां वो श्रेष्ठ नामधारी काम के आधार पर, और कहां ये भ्रष्ट काम करने वाले भ्रष्ट मनुष्य। तो भ्रष्ट और श्रेष्ठ में रात दिन का फर्क हो जाता है। तो जरूर कोई इस दुनिया के सारे मनुष्य मात्र के बीच ऐसा माने भी है भी है। जिसके द्वारा सब की सदगति होती है। सर्व की सदगति करने वाला तो कोई और है, जिसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। शास्त्रों में उसे कहा ही जाता है अक्षर, कभी भी क्षरित नहीं होता, कभी भी पतित नहीं होता। जो सदैव ही सबका सदगति दाता है, कोई की भी दुर्गति नहीं करता। कैसी भी पतित दुनिया में आता है, पतित से पतित तन में आता है, तो भी उस पर पतितों का कोई संग का रंग नहीं लगता। इसके अलावा और जो भी मनुष्य मात्र हैं, चाहे वो रामकृष्ण की देवात्माएं ही क्यों न हो, कुछ न कुछ पतितों के संग के रंग में आन करके पतन को अवश्य पाती हैं। हाँ, जब वो भगवान ऊंचे ते ऊंचा करतार, सुप्रीम सोल, सर्व का सदगति दाता इस सृष्टि पर आता है, तो वो देवताएं जो 33 करोड़ देवताओं में सबसे श्रेष्ठ माने गए, जिनकी बहुत महिमा है शास्त्रों में, राम और कृष्ण, वो आत्माएं सत्य को सबसे पहले पकड़ती है। तो उनको ही कहेंगे माननीय मनुष्य, और मनुष्य कहा ही जाता है मनन चिंतन मंथन करने वाले को, मन बुद्धि का उपयोग करने वाले को। मन बुद्धि का उपयोग करके वो ऊंचते ऊंच करतार भगवान को पहचान लेती हैं। और सारी मनुष्य सृष्टि की सदगति के निमित्त बनती हैं। और भी बहुत हैं, जैसे अष्टदेव हैं, जिनमें से एक हमारे पास भी बैठा हुआ है, बाबा ने बोला। हमारे पास बैठा हुआ है, हमारे एक के लिए कहा जाता है या दो से ज्यादा के लिए कहा जाता है? कब की वाणी है? छाछठ की। तो बोला उन अष्ट देवों में से कोई न कोई एक हमारे पास बैठा हुआ है, नाम नहीं बताया। अगर ला हो तो फिर ऐसे नाम नहीं उनको अलाउ किया जाता है। मधुबन से सभी सेंटर्स के रूहानी ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी सर्वसेवुल वफादार फरमान बरदार रूहानी बच्चों के प्रति बाप दादा का आज गुरुवार के दिन सभी बच्चों को दिल व जान से और प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। ओम शांति।